जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल
श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादांग सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज आप सबके बीच में बैठ के भगवान श्री कृष्ण के बारे में दो शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए बड़े प्रसन्नता की बात है। वास्तव में सबसे बड़े प्रसन्नता की बात तो ये है कि न केवल श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है, परंतु बड़े प्रसन्नता की बात यह भी है विशेष करके कि इस यात्रा को यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए अनेक भक्त यहाँ आए हुए हैं बेलगाम से। और विशेष करके हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में उपस्थित हैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी, जो अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम से भी थोड़ा समय निकालकर हर साल यहाँ बेलगाम में आते हैं रथ यात्रा के समय अपने बहुत ही मधुर कीर्तनों के द्वारा, अपने पावन कथाओं के द्वारा सबको कृष्ण भक्ति के आनंद को प्रदान कराते हैं। साथ साथ में परम पूज्य राम गोविंद महाराज यहाँ आए हैं, पहली बार आए हैं बेलगाम में, तो हमें बहुत, हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि वो यहाँ पर भी आए हैं। आशा करते हैं कि वो आगे भी आएंगे। और साथ साथ परम पूज्य शुकदेव स्वामी महाराज भी यहाँ पर पधारे हैं निल्लोर से, वो भी पहली बार यहाँ, पहली बार दूसरी बार चौथी बार आए, लेकिन अनेक लेकिन रथ यात्रा के लिए पहली बार आए हैं, और उनकी पिछली यात्रा काफी समय पहले हुई थी। आशा करते हैं कि वो भी यहाँ पर आते रहेंगे। यहाँ श्रीमान HD काटवा जी ने उनके घर में बहुत अच्छा सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया है। भक्तों के समाज में तो हम उन्हें गोलोक चंद्र प्रभु कह के पुकारते हैं, आप सब उनको HD काटवा के नाम से जानते हैं। तो इस जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव में आप सब ने देखा होगा कि किस तरह का वातावरण निर्माण हो गया। जहां भगवान उपस्थित रहते हैं, और वो तो सब जगह ही हैं, और जहां विशेष करके उनकी अर्चा विग्रह या उनकी श्री मूर्ति विराजमान होती है, और जहां पर उनके उत्साही भक्त भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वहां एक ऐसे अलौकिक दिव्य वातावरण निर्माण हो जाता है जिसके द्वारा सबके हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए एक अद्भुत प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। कल आप सबने अवश्य इस रथ यात्रा के महोत्सव में अनुभव किया होगा कि कितना दिव्य वातावरण निर्माण हो गया था। हम भी स्वयं देख के आश्चर्यचकित रह गए कि कितने भक्ति भावना से बेलगाम के लोग इसमें शामिल हो रहे थे। जप यज्ञ वहां जो एक विभाग था रथ यात्रा के पंडाल में, वहां लोग हरे कृष्ण महामंत्र को पढ़ते पढ़ते तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा कर रहे थे, तो कहीं वो प्रसाद पा रहे थे, तो कहीं प्रदर्शनी आदि में शामिल हो रहे थे, तो अनेक लोग कृष्ण कथा बड़े ध्यान से सुन रहे थे, कीर्तन में शामिल हो रहे थे। जगह जगह ऐसे लग रहा था कि मानो साक्षात भगवान का वैकुंठ धाम ही प्रकट हो चुका है, और वास्तव में ये वैकुंठ ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, कि हे नारद, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, हालांकि वो करते हैं, मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, हालांकि वो करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं खास करके उस स्थान में उपस्थित रहता हूं, तत्र तिष्ठामि, जहां पर मेरे भक्त लोग मिलकर मेरा गुणगान करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मेरे पवित्र नामों का संकीर्तन करते हैं, ऐसी जगह में विशेष करके मैं उपस्थित रहता हूं। तो भगवान केवल भक्तों के भक्ति से आकर्षित होते हैं। दुनिया की और कोई भी चीज भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती, न हमारी बुद्धि, हमारा सौंदर्य, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी योग्यता, हमारा शारीरिक बल, हमारा सैन्य बल, हमारी आर्थिक परिस्थिति, ये सब चीजें भगवान को आकर्षित नहीं करती हैं। भगवान आकर्षित होते हैं तो केवल भक्ति से। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में वो तो कह ही चुके हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम् भक्ति पहरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः, कि यदि कोई मुझे भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल या जल अर्पण करे तो मैं उसे बड़े प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। तो भक्ति करने के लिए कोई भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्ति भाव से, थोड़े श्रद्धा से हम भगवान को कुछ अर्पण करें, चाहे वो हमारी बुद्धि हो, हमारी वाणी हो, हमारा बल हो, हमारी योग्यता हो, हमारा धन हो, तो भगवान उसे खुशी से स्वीकार करते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति का मार्ग कितना सरल है, कितना सुलभ है, और सभी को इसका लाभ लेना चाहिए समाज में। इसलिए तो भगवान अवतरित होते हैं और ये भगवद गीता का ज्ञान हम सबको देते हैं। परंतु देखा जाता है कि आधुनिक काल में भौतिक वातावरण अधिक मात्रा में निर्माण हो गया है, लोग बहुत लोभी हो गए हैं, बहुत स्वार्थी हो गए हैं, और भौतिकतावाद, भोगवाद, नास्तिकवाद, ऐसे वाद फैले जा रहे हैं। इसलिए इनका प्रतिकार करने के लिए, इनका विरोध करने के लिए कृष्ण भक्ति का प्रचार बड़ी मात्रा में करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति ही एकमात्र उपाय है जिससे कि सारे मनुष्य समाज में, बल्कि सारे पृथ्वी में शांति और सुख पैदा हो सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपना जीवन बहुत सरल बनाए और सरल बना के अपनी शक्ति और अपने समय की बचत करे, ताकि वो अच्छी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए समय और शक्ति निकाल पाए। ज्यादा मनुष्य को जीने के लिए आवश्यक नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक अवधूत ब्राह्मण महाराज यदु को अपने अनेक गुरुजनों के बारे में बताते हैं। उनमें से वो मधुमक्खी की बात भी करते हैं कि मधुमक्खी भी मेरे गुरु है। तो कैसे? मधुमक्खियां वैसे दो प्रकार के होती हैं। एक मधुमक्खी वो होती है जिसको भ्रमर कहते हैं। वो मधुमक्खी फूलों के ऊपर जाके थोड़ा थोड़ा अमृत लेती है और उससे संतुष्ट हो जाती है, इसको माधुकरी कहते हैं। और इसलिए जो संत, जो भक्त वृंदावन जैसे स्थान में रहते हैं, वैराग्य का जीवन स्वीकार करते हैं, वो अनेकों बार माधुकरी के पद्धति को स्वीकार करते हैं। हर एक घर में जाके कहीं एक रोटी ले लिया, कहीं दूसरा थोड़ी सी सब्जी ले ली, ऐसा जो भी मिलता है उसे संतुष्ट होते हैं। तो ये है माधुकरी। मनुष्य को चाहिए कि वो सरल जीवन जिए, माधुकरी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति को हर घर में जाके रोटी लेनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपना जीवन सरल बनाना चाहिए। दूसरे प्रकार की मक्खी मधुमक्खी होती है जिसको मक्षिका कहते हैं, मक्षिका। और ये जब मधु को इकट्ठा करती है, इकट्ठा करते करते रहती है, परंतु उसका भोग कोई और कर जाता है। कोई आदमी आता है और उस शहद को लेके, मधु को लेकर चले जाता है, तो जिस चीज के लिए वो मधुमक्खी ने इतना परिश्रम किया है उसका भोग उसको नहीं मिलता है। हमारे यहाँ एक प्रकल्प है 40 किलोमीटर दूर गोकुल धाम, जहाँ जंगल पास में है, वहाँ भालू भी हैं, और आप तो जानते हैं कि भालू तो शहद बहुत पसंद करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग शहद का उत्पादन नहीं कर सकते क्योंकि भालू को उसका सुगंध आता है। जहां भी मधु हो वहां भालू ढूंढ के उस मधु को ले लेता है और वो मधुमक्खियां खूब दस्ती हैं उसको, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे बताया जाता है कि कई लोग होते हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं समाज में, परंतु कोई और उसका भोग कर लेता है और अंततः हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है मृत्यु के समय। तो हमें पहले मधुमक्खी की तरह बनना चाहिए, भ्रमर। थोड़ा सा जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है, हमारे भाग्य में लिखा है, ईमानदारी के परिश्रम से जो थोड़ा बहुत हमें मिलता है, थोड़ा हो या ज्यादा हो, हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए और ज्यादा समय हमें भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए लगाना चाहिए। तो ये मनुष्य जीवन है, हमारी जीवन शैली इस प्रकार होनी चाहिए, तब हमारा मनुष्य जीवन सफल रहेगा। तो आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आपका मूल्यवान समय निकालकर, इसके लिए हम बहुत आपके आभारी हैं। श्रीमान गोलोक चंद्र प्रभु और उनके परिवार के प्रति भी हम धन्यवाद की भावना अर्पण करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कम समय पर इतनी अच्छी व्यवस्था हम सबके लिए की है। तो आशा करते हैं कि आप सब आज शाम को भी जगन्नाथ रथ यात्रा का जो दूसरा दिन है, इस कार्यक्रम में भी राधा गोकुल आनंद के प्रांगण में आएंगे और वहां दिव्य लाभ, दिव्य आनंद का लाभ प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। अब हमारे बाद में भी और हमारे माननीय भक्त सन्यासीगण इकट्ठे हैं, तो वो भी कुछ भगवान कृष्ण के बारे में कहेंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। जो थोड़ा विचार मुझे आ रहा था, छोटा हिंदी भजन है, उसको मैं गाना चाहूंगा। ये सरल भजन है, आप भी पीछे बोल सकते हैं। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे, गोविंदा का नाम बिन तेरा कोई न आवे काम रे, गोविंदा का नाम बिन तेरा कोई न आवे काम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे, ये जीवन है सुख दुख के मेला नियादारे सपन के खेला, ये जीवन है सुख दुख के मेला नियादारे सपन के खेला, भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे जाना तुझका पड़ा केला भजले हर का नाम रे जाना तुझका पड़ा केला भजले हर का नाम रे भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे हर के महिमा गा के प्रेम के उस पर पाग लगा के गोविंदा के महिमा गा के प्रेम के उस पर पाग लगा के भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे जीवन अपना सफल बना ले चल ईश्वर के धाम रे जीवन अपना सफल बना ले चल ईश्वर के धाम रे भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे गोविंदा जय गोपाल जय 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 गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
नित्यगौर हरिबाल 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 हरिबाल
कलियुग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन की युग अवतार गौर हरि भगवान की जगत गुरु श्री वल प्रभुपाद महाराज की ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदांतकं सबल्यं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे चैतन्य महाप्रभु की लीला में सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के बहुत बड़ा विद्वान थे, तो वे पहले भगवान को निराकार मानता था, लेकिन जैसा उनको चैतन्य महाप्रभु और उनका भक्तों का संघ का लाभ मिला, इतने बड़े विद्वान और उनके अनुयायी लोग, इतने हजारों हजारों अनुयायी लोग थे, ऐसा तो कोई किसी पंथा से होता है और उनके पीछे हजारों हजारों लोग होते हैं, ऐसे लोग अपने रास्ता को मुश्किल से बदलेंगे ना, क्योंकि उन्हीं के पीछे इतने सारे लोग हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, तो वो जानते हैं हर किसी को, किसी प्रकार के लोगों को कैसे उनका जीवन का कल्याण किया जाए और उनको सच्चा आनंद दिलाया जाए। तो जैसा चैतन्य महाप्रभु के संग में इतने कट्टर जो निराकारवादी है, जो सार्वभौम भट्टाचार्य, और बहुत ही श्रेष्ठ जगन्नाथ भक्त बन जाते हैं, हरिभक्त बन जाते हैं, तो उन्होंने एक श्लोक में ऐसा कहते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदर तमहम प्रपद्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के संग में आकर अपने को पहचाना, अपने आनंद को प्राप्त किया, और तब उन्होंने जो भगवान कृष्ण के ये कलियुग का जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु, उनके अवतार विशेषता को वो व्यक्त करते हुए इस श्लोक में वैराग्य विद्या ने, जो हम भारत के निवासी है तो भारत को धर्म भूमि या पुण्य भूमि बोलते हैं, और भारत के बाहर इसको भोग भूमि बोलते हैं। तो भारत में आत्मज्ञान है और भारत में धर्म ग्रंथ है और बड़े आचार्यगण भारत में आविर्भूत हुए हैं, और ऐसे भी हमको यही शिक्षा दिया है हम मानव जीवन को सफल बना ले ने? तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरलता से ने? आजकल के समाज में ये जरूरत नहीं है हम लोग शहर को छोड़कर चले जाए या हम परिवार को छोड़कर चले जाए या हम नौकरी धंधा को छोड़कर चले जाए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा सरल और पक्के रास्ता दिया है, हम कुछ छोड़ना नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको जोड़ ले जीवन में, जो ये हरिनाम संकीर्तन है तो हमारा हृदय का परिवर्तन होगा, हमारा हृदय का विकार मिट जाएगा और जैसा भगवान के प्रति हमारा भाव पैदा होगा तब हमारा जीवन बदल जाएगा ना। जब हमारा हृदय बदल जाता है, भले हम शहर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हम पैसा वाले होते हैं, सास ये प्रभु जी बैठे हैं मुझे बता रहा था भक्ति रसामत महाराज ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन जैसा ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के संपर्क में आए तो आप देख ही रहे हैं, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के एक पुस्तक में जो एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इस ग्रंथ में एक उदाहरण देते हैं ना, एक लोहे को जंक लग जाता है, ये जंक को निकालने का दो तरीका होता है, एक है हम हथौड़ी मार मार के उसको जंक को हम निकाल सकते हैं, नहीं उसको कुछ रसायन में डाल देते हैं जैसे कुछ एसिड में डाल देते हैं वो जंक अपने आप खा जाएगा ना, तो हमें कुछ ऐसे बड़ा घोर प्रक्रिया करना नहीं पड़ता है, लेकिन हमें ये फार्मूला मालूम होना चाहिए कुछ रसायन में डालने पर जंक खाया जाएगा ना, तो इस प्रकार से तो हम सब लोग विद्या अहंकार में रहते हैं, हम लोग गलत उपाधियों में रहते हैं, हम लोग बहुत गलत प्रकार की इच्छाएं रखते हैं जो हमें कभी शांति नहीं देता है, हमें सुख नहीं देता है, फिर भी हमें करे क्या है हमें मालूम नहीं है, और हम अन्य मार्ग के बारे में सुनेंगे तो ज्ञान के बारे में, योग के बारे में, ध्यान के बारे में हमें लगता है ये तो व्यवहारिक नहीं है, ये तो संभव नहीं है, लेकिन कौन कह सकता है हम भगवान के नाम ना हम काम करते हुए नाम ले सकते हैं ना, तो इस प्रकार से ये कलयुग की जो अभागी लोगों के लिए जिधर हमारा आयु कम है, जिधर हमारा बुद्धि कम है और हमारा बुद्धि बहुत दुनियादारी की विचार है और कभी हम थोड़े शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हम उसके कुछ अपना अर्थ जैसा निकालते हैं अलग अलग प्रकार के ने? हम कह सकते हैं जैसे भारत में इतने संस्थान हैं, इतने मंदिर हैं और इतने साधु संत लोग हैं, क्या सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं क्या? नहीं ने? क्योंकि हम अलग अलग अपना व्याख्यान निकालते हैं, लेकिन भगवत गीता को सब मानते हैं और मैं कहता रहता हूँ भगवत गीता आप पढ़ने के बिना ही भगवत गीता का जो सारांश को आप निकाल सकते हैं ना, अर्जुन अपना कुछ विचार रखा था, अपना कुछ करना नहीं करना चाहता था और जब भगवत गीता को सुना तो अर्जुन ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया और अपने विचार को छोड़ दिया और भगवान कृष्ण जैसा उनको मार्गदर्शन कर रहे थे ऐसा करने के लिए तैयार हो गया, तो ये ना अर्जुन पहले भगवान को अपना बराबर मानता था और अपने स्वतंत्र विचार रखता था, लेकिन बाद में अर्जुन भगवान कृष्ण को स्वीकार किया, आप भगवान है, परब्रह्म परंधाम भगवान ने स्वीकार किया और करिष्ये वचनं तव कह दिया था, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है, तो हम वैराग्य का अर्थ यह नहीं है हम लोग घर बार छोड़ के हम जंगलों में चले जाएंगे या भीख मांगने के जैसे मधुकरी की बात कहते ये नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में वैराग्य ने, तो हृदय में वैराग्य वो मिलेगा जब हमें भक्ति का आनंद मिलेगा तो हम अपने आप ये भोग प्रवृत्ति हमारा जो संचित करने की जो प्रवृत्ति है ये सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो ये भगवान का नाम है हमारे हृदय को ऐसे पिघल देता है, तो हर व्यक्ति के लिए मौका है, अवसर है, केवल ये खुद ये अवसर को उठाए भगवान के नाम लेने का, और सारी आध्यात्मिक जीवन का जो अवसर है, लाभ है, आनंद है, हमें मिलना शुरू हो जाएगा। एक बार आप हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे मेरे सामने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। कल आप सभी देखे हैं श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का रथ यात्रा में, कई तो अपने मन से ही भाव विभोर होकर भी अपने मन से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, साथ दे रहे थे। कई तो रोड के साइड में भी खड़े थे, कई घरों में बैठे थे, परंतु वो चाहे ना चाहे किनका तो दिख रहा था, क्योंकि इनका मुंह भी हिल रहा था, हाथ भी अपना आप ही जा रहे थे। जो रोड पर चल रहा था अपना पैर भी हिल रहा था, वो नहीं चाहते हुए भी कर रहे हैं कि वो थोड़ा शर्मा रहे थे कि कहीं हम कोई कहने से क्या बोलेंगे, परंतु अपना हाथ पैर अपना काम कर रहा था, कान तो सुन रहा था। जहाँ जिस स्थल से भी ये रथ चल रहा था, भगवान का नाम का कीर्तन हो रहा था जोर जोर से, उस स्थान में जो स्थान पहले था उसके पहले बाद में दोनों में बहुत सारे अंतर होता है, बहुत सारे अंतर। क्योंकि जब रथ नहीं चला तो उसमें केवल कर्म का ही था, परंतु जब भगवान का नाम गुणगान करते हुए कीर्तन करते रथ वहाँ से गुजर गया, उसके बाद वो ध्वनि आकाश में रहेगा, उसका तरंगे चलते रहेगा, जो सुना है उनका मनन होते रहेगा, वो नहीं चाहते भी उनका कान में चलते रहेगा। ये हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसा प्रभाव है, भागवत में कहा गया जिस प्रकार कोई रोगी होता है उसको दवाई देने से, दवाई तो सभी कड़वा रहता है, कोई लेने नहीं चाहता, चाहे अपने इच्छा से ले या जबरदस्ती से ले, परंतु जब दवाई अपना पेट में चला जाता वो अपना काम शुरू कर देता। इसी प्रकार जो हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान हरि का नाम को चाहे अपने इच्छा से लें, सुने, बोले या अपनी इच्छा नहीं है, फिर भी जबरदस्ती से कान में जब उसका महामंत्र का ध्वनि जाएगा, वो अपना ध्वनि का जैसे जाएगा अपना काम शुरू करेगा, अपने इंद्रियों को शुद्धि करना शुरू करेगा, नहीं भी चाहता वो अपना काम करेगा जिस प्रकार दवाई करता। इस प्रकार जो है बहुत सारे जनता जो भी कल सुन रहे थे उनको बड़ा लाभ हुआ, अज्ञात सुकृति है उनको, वो नहीं चाहते भी उनको, लोगों को कितना सुकृति हुआ उनको मालूम नहीं है, परंतु कुछ समय के बाद उनको पता चलेगा, एक न एक दिन वो मंदिर की तरफ आ ही जाएगा, हरे कृष्ण मंदिर की तरफ। ये अत्यंत आवश्यकता है कि हम लोगों का जीवन में, जीवन तो सभी तो जन्म लेंगे, बाद में तो हम शरीर छोड़कर जो के मर गया, ये तो अवश्य है, जाता है तो ये ध्रुव मृत्यु, कोई नहीं बोल सकता हम शाश्वत है, परंतु जीवन लेने के बाद हम क्या काम किया है, जीवन का लक्ष्य क्या था, हम क्या पा लिए इस जीवन में। भागवत में कहा गया पराभवस्तावद अभूत जातम जीवन न जिज्ञासत आत्म तत्व। जब जन्म लेने के बाद जब ही कोई आत्म तत्व के बारे में सोचा नहीं, केवल खाया पिया सो गया मर गया, इसने जीवन को हार गया, कुछ भी नहीं किया उसने, ये तो पशु भी कर लेता है, मनुष्य में कोई विशेष नहीं है, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। मनुष्यों में कोई विशेषता नहीं है। मनुष्यों में विशेष ये है कि हम भक्ति के बारे में सोच सकते हैं, सत्संग के बारे में सोच सकते हैं। पशु नहीं बोलेंगे, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं बोलेंगे, सत्संग की तरह चलते हैं मंदिर में दर्शन के, परंतु मनुष्य सोच सकता है। थोड़ा हमारे को भगवान ने ये स्वतंत्रता दिया है, इसलिए हमें तटस्थ जीव बोलते हैं। ये हमारा स्वतंत्रता है कि हम भौतिक जगत में रहकर जो बोलते हैं कि आनंद है, उस आनंद में रहकर जन्म मृत्यु का घेरे में फंस जाएं, या इस जन्म मृत्यु का चक्कर से निकाल कर इसका जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए भगवान का स्मरण करें, भगवान नाम जप करें, भगवान का सेवा करें, ये अपना हाथ में है। मनुष्य शरीर मिला है केवल जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए, इसका अलावा और कोई काम नहीं है। यदि कोई सोचे हम इंद्रियों का तृप्ति के लिए है, ये तो पशुओं के लिए भी है। काष्ठान कामन अर्हति विभुजम थे, बोलते हैं कि जब केवल जो मनुष्य शरीर धार, जो भी शरीरधारी जीव है उसे मनुष्य शरीर जिनको मिला हुआ है, वो केवल अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्रिय भोग जो है इवन मल खाने वाला पशु भी है विट भोजन से। मनुष्य शरीर के बहुत बड़ा एक अलौकिक जन्म है, ऐसी बात नहीं है, सभी को नहीं मिलता, बड़ा दुर्लभ है ये। इस दुर्लभ जीवन को हम उपयोग करना चाहिए ताकि दोबारा किसी माता का गर्भ में हम जाना ना पड़े। माता का गर्भ में अत्यंत कठिन है, कष्ट होता है, ऐसे मृत्यु भी बहुत कष्ट। इस बीच में बुढ़ापा, जो बूढ़े हैं उनको पूछो, और व्याधि, जन्म दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बहुत कष्ट है। इससे छुटकारा पाना है, उसके लिए भगवान ने अत्यंत कृपा करके हमें मनुष्य शरीर देते हैं ताकि भगवान का भक्ति करें। केवल मनुष्य शरीर में ही भगवान का भक्ति हो सकता है, और किसी शरीर में नहीं है। भगवान का भक्ति देवताओं को भी लाभ नहीं, दुर्लभ है ये। इसलिए मनुष्य शरीर हम लोग मिला हुआ है, बड़ा भाग्य से ऐसे सत्संग में आने का भी अवसर मिलता। सभी नहीं आ सकते सत्संग में भी। रामायण में लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी, पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, सत्संगति संस्कृति करांता। सत्संग में, सत्संग बिना भक्ति नहीं मिलेगा। अब सत्संग कैसे मिलेगा, कई जन्मों का पुण्य किया हुआ संचित पुण्य कर्म जब जागृत होता तब जाकर सत्संग में आने के लिए अवसर मिलता। सत्संग से हमारा संसार से बंध, संस्कृति संसार का छुटकारा मिल जाता, मुक्ति मिल जाता है। इसके लिए हमें आवश्यकता है भगवान का भक्ति। भक्ति किसको करना चाहिए, जैसा यदि हमारे को किसी का बहुत बड़ा धनराशि चाहिए, बैंक गवर्नमेंट बोला कि पैसा मिलेगा, अगर मैं लोन अप्लाई कर दिया, अगर वो कोई बोले मिनिस्टर सैंक्शन करना, मेरा फ्रेंड मिनिस्टर होम मिनिस्टर है, क्या होम मिनिस्टर मेरे धनराशि सैंक्शन कर सकते हैं? नहीं, आर्थिक मंत्री कर सकता है, ये नहीं कि हो गृह मंत्री नहीं है। इसी प्रकार जो है कई देवता हैं बहुत है, वो सभी ये विश्व का चलाने में ले कई डायरेक्टर्स है, डिपार्टमेंटल हेड्स है, वो सभी जो हमें चाहिए उसी के पास जाना चाहिए। यदि हम मुक्ति चाहिए, मुक्ति कौन देता वो जाना चाहिए। मुकुंद किसको बोलते हैं आप सभी जानते हैं, मुकुंद किस किन को बोलते हैं? हाँ, कौन है वो? कृष्णा विष्णु, मुकुंदा नमः बोलते हैं। इसलिए शंकराचार्य भी क्या बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे पारावारे पाहि मुरारे। जो साक्षात भगवान शिव जी का अवतार है, परंतु मुरारी कृष्ण को पूछ रहे हैं, ये मुरारी मुझे दोबारा मरना जन्मा फिर माता के गर्भ में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है, इससे छुटकारा पा लो मुरारी। इसलिए यदि भक्ति करना, मनुष्य जन्म लेने के बाद हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा करना है, और पूरा लक्ष्य क्या है, जन्म से छुटकारा पाना है। उस लक्ष्य सिद्धि के लिए भक्ति करना है केवल कृष्ण का। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। और कोई नहीं है कलयुग के लिए, और कोई साधन नहीं कलयुग में, केवल हर नाम संकीर्तन ही एक साधन है जिससे हम भवसागर से पार कर सकते हैं। अन्यथा हमारे को एक बड़ा अनमोल मोती मिला है लेकिन हम जानते नहीं, फेंक दिया जैसा हो जाता है। अब बड़ा भाग्यशाली है सभी कि कल का रथ यात्रा में भी भाग लिए हैं और सत्संग में आए हैं, और ऐसी मंदिर में जाए के राधा गोकुलानंद मंदिर में जाइए उसे पता चले कि हमें जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसा प्राप्त करना चाहिए, इस लाभ जीवन को पूरा सार्थक बनाना चाहिए। हरे कृष्ण।
ज्ञानतमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्दश्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम
हरे राम राम हरे हरे। आभारी है हम सभी उपस्थित सन्यासी भक्त वृंदों के, इन्होंने अपने उपदेश अमृत से मैं भी लाभान्वित हो गया, हम सभी आप भी लाभान्वित हुए होंगे ही। अमृत आप सभी के पधारने के लिए आभार और आप सबका हार्दिक स्वागत मैं भी करता हूँ। इतना भाग दौड़ कर जीवन में आज कोई छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन आ जाए कृष्णा लोग तो व्यस्त रहते ही है, कुछ लोग तो कहते हैं मरने के लिए समय नहीं है, मरने के लिए समय किसके लिए समय नहीं है, मरने के लिए समय नहीं है। हमको नहीं, मरने के लिए तो और कोई समय निकालेगा व्यवस्था हो जाएगी, समय नहीं है तो भी। यमराज जब आते हैं हम उनको नहीं कह पाएंगे बिजी चल रहे थोड़े, हम वेरी बिजी, आपने कुछ अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया ऐसे ही आ गए आप, कम बैक कम नेक्स्ट टाइम, ऐसा कह पाएंगे हम? है कोई बहादुर गबरू जो कह सकता है नेक्स्ट टाइम वेरी बिजी। वैसे आशा है कि हमको आपको यमराज नहीं आएंगे ले जाने के लिए, या यमदूत नहीं आएंगे, दूसरे दूत आएंगे, दूसरे प्रकार के दूत आएंगे, वे रहेंगे विष्णु दूत। दो प्रकार के दूत आते हैं, तो जो भी रथ यात्रा में आए थे कल, जो आज यहाँ सत्संग में आए हैं और ये सारी शिक्षाएं सीख के समझ के, या जो कुछ कोई सूत्र या कुछ केमिकल महाराज सुखदेव गोस्वामी महाराज बता रहे थे, या कुछ सूत्र बताया जाते, कोई रसायन में आपको डुबो दो अपना हृदय या मन, बाहर निकालो तो जो मल है वो हट गया, मिट गया और स्वच्छ हुआ आपका दिल, आपकी चेतना। ऐसा जब होगा तो हमारा नाम यमराज के हिट लिस्ट से, यमराज की हिट लिस्ट में वैसे सभी के नाम होते हैं, उनके पास बड़े सुपर कंप्यूटर्स है, तो उसे शिफ्ट होता है, हमारा नाम ट्रांसफर होता है। और इससे यमराज कोई दुखी या यमदूत कोई दुखी नहीं होते, काम कम हो गया, ये काम और कोई करेगा, इनका चार्ज और कोई लेगा। आप क्या चाहोगे? ऐसे हम तो उत्तर जानते हैं, आपको विष्णु दूत आ जाए, भगवान के धाम जाना ये जीवन का लक्ष्य है, हम जिनके हैं उनके पास जाना है, हम और किसी के नहीं है, हम और किसी के भी नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर हम जीवात्मा भगवान का है और भगवान के अन्य भक्तों का भी है, हमारा परमात्मा के साथ संबंध है और आत्माओं के साथ भी हमारा शाश्वत संबंध है। वैसे भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, तो ये उत्सव, ये भी एक उत्सव, धीरे धीरे यहाँ पर काटवा भी काटवा जी नहीं रहे, काटवा बन गए गोलोक चंद्र दास, गोलोक चंद्र के वे दास बन चुके हैं। और पहले जब आते तो सीधे महाप्रसाद गोविंद चलता था, सीधे प्रसाद, अब हमसे थोड़ा कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है, आप भाषण दो तभी प्रसाद होगा। और आप सभी मेहमान क्या करो, पहले भाषण सुनो तभी प्रसाद होगा। इट्स अ नाइस ट्रिक, अच्छी है युक्ति, मतलब डबल बेनिफिट, सही अनामृत पाओ फिर क्या करो, राधा कृष्ण का आप तो उल्टा करवाते हो, सही अनामृत पाओ और फिर राधा कृष्ण का सो जाओ, नहीं तो ये काटवा जी का आप सभी से, हम सभी से प्रेम है, उनकी उदारता है, इस माधुर्य का, जिस मधुरता का वे स्वयं अनुभव कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इसको हम औरों के साथ शेयर करते हैं, इतनी मीठी बात है, सच अ गुड थिंग, मीठी बात है, अमृत है, क्यों ना अपने मित्रों को भी। पहले के जीवन में वे और भी कुछ खिलाया पिलाया करते थे, अब तो केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही चल रहा है, न तो मटनम न तो चिकनम। वो दिन चले गए। आई डोंट विश टू एम्बैरेस यू, किंतु आपने स्वयं ही बताए थे आप पूर्व जीवन की कथाएं हमसे पहले बता चुके हैं। तो हुआ, हम सभी का ऐसा जीवन रहा है, या इस जीवन या पहले किसी जन्मों में हम ऐसे ही रहे हैं। तो हुआ, चलो इनके साथ शेयर करते हैं। तो किसको शेयर करें? कृष्ण को शेयर कर रहे हैं। कृष्ण मीठे हैं, कृष्ण मधुर है, और माधुर्य में कृष्ण की और कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो इन्होंने सोचा कि अपने मित्रों को हम भी कृष्ण को देते हैं। ठीक, कृष्ण कृष्ण को लो, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु ने वैसे ये कार्य किया है, स्वयं भगवान ही शिक्षा दिए, और उस शिक्षा को सारों भट्टाचार्य भी स्वीकार किए। उनकी अपनी खुद की और कई सारी आइडियाज थी। सारों भट्टाचार्य के धार्मिक तो जरूर थे, लेकिन भगवान के रूप को, नाम को, लीलाओं को नहीं मानते थे। अद्वैत को मानते थे, अद्वैतवाद, अद्वैत। हम भगवान से भिन्न नहीं है, हम भगवान है, या हम भगवान बन सकते हैं, ऐसा जो विचार प्रचार है, आचार भी है। तो ये जो मत है, मुकुंद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मुकुंद दाता है, मुकुंद मुक्ति दाता श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उस सारों भट्टाचार्य को भी मुक्त किया, जो केवल मुक्ति ही चाहते थे, मुक्ति पदे। जहाँ फिर जब वो भक्त बन गए तो मुक्ति पदे, भागवत को जब मुक्ति पदे का उल्लेख के स्थान पर भक्ति पदे कहने लगे, इतना परिवर्तन हुआ उनमें। मुक्ति को ठुकराने लगे, मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं भक्तों के लिए। जो भक्त बनता है वो पहले मुक्त होता है। तो आप सभी भी अपने अपने घरों में फिर और अपने इष्ट मित्रों को बुला सकते हो, और यह कुछ विशेष प्राप्ति हो रही है, माधुर्य मीठास, कृष्ण प्रसाद की भी मीठास। कृष्ण प्रसाद इतना मीठा क्यों होता है? कृष्ण प्रसाद कृष्ण है, स्वयं कृष्ण प्रवेश करते हैं। या कृष्ण प्रसाद या भोग को, नैवेद्य को भगवान जब ग्रहण करते तो भगवान के मुख का लार लार सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है। एक समय चैतन्य, ए आओ भक्तो, यहाँ प्लीज कम हियर, ये जो प्रसाद है प्रसाद, इसमें भगवान के मुख के जो रस है, जो अन्न के साथ मिश्रित हो जाते हैं, तो ये इस प्रसाद में भगवान का लार है, भगवान का मुख का रस है, या इसलिए ये प्रसाद इतना मीठा है। तो किसी को कृष्ण प्रसाद देना मतलब कृष्ण ही को देना है। तो जरूर आप यस अब अपने घरों में भी पार्टी, कृष्ण पार्टी, हरे कृष्ण पार्टी, कृष्ण प्रसाद पार्टी, वह भी चैंटिंग डांसिंग हो सकता है, नो प्रॉब्लम, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, फूड हो सकता है, यस, लेकिन सारा कृष्ण सेंटर्ड, कृष्ण के लिए नृत्य, आत्मा का नृत्य। महाराज राम गोविंद महाराज बता रहे थे, हमने भी देखा कल जब लोग ऊपर से देख रहे थे खिड़कियों से अपने रूफटॉप से, वे भी तुरंत कृष्ण कीर्तन उनके कर्णों में प्रवेश करते ही कृष्ण कीर्तन स्पर्श करता है, आत्मा को स्पर्श करता है। और कृष्ण कीर्तन जो कृष्ण ही है आत्मा के संपर्क में आता है, उससे हो जाता योग, लिंक स्थापित हो गई, इसी को योग कहता है, योग। और ये तो सर्वोत्तम योग है, भक्ति योग है। उसी के साथ अंदर की आत्मा हिलने डुलने लगती है, नाचने लगती है। भगवान के भक्त जब कीर्तन करते हैं तो उनका शरीर नहीं नाचता, उनका आत्मा, उनकी आत्मा नाचती है। और फिर शरीर के लिए तो कोई पर्याय नहीं बचता, आत्मा जब नाच रही है तो शरीर को क्या करना पड़ता है, शरीर भी नाचता है। और लोग जो कई नाचते होंगे उनके तो शरीर ही नाचते हैं, कोई शराब पी के नाच रहा है, जब बैंड बाजा होता है हमारे देश में, जब मैरिज पार्टी, अगर कोई लोग नाचते हैं तहे दिल से, अगर कोई नाचते हैं तो डांसिंग, मैरिज डांसिंग पार्टी, और उसमें भी अगर ज़्यादा नशा अगर चढ़ी है तो और भी नाचते हैं, तो उस समय तो केवल उनका शरीर ही नाचता है, आत्मा को तो उल्टी आ जाती है। वहाँ रहना भी, आत्मा बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है आत्मा को। आत्मा तो भक्ति रस अमृत का पान करना चाहता है। महाराज जब बोलते तो भक्ति रसामृत उनके मुख से टपकता है। तो आत्मा तो उत्कंठित है अमृत पान के लिए, और पिलाया उसको शराब जो खराब है। शराब क्या है, खराब जो है उसको पिलाया, अपने डियर फ्रेंड्स को पिलाया, न्यू ईयर्स पार्टी। तो इससे हमने कोई मेहरबानी नहीं की हमारे फ्रेंड के ऊपर, उसको शराब पिला के या उसकी सिगरेट जला के, उसके पास दिया सलाई नहीं, ही डजंट हैव मैच बॉक्स या लाइटर। तो कभी कभी लोग हाथ में सिगरेट लगे खड़े होते हैं, देखते रहते हैं कोई उपकार करेगा उन पर, तो कोई सामने आ जाता है और अपने लाइटर से उसको जला दिया, सिगरेट को जला दिया। तो सिगरेट जिसकी जलाई वो कहते थैंक यू, थैंक यू। किस लिए थैंक यू, आपने मेरे अभी तो सिगरेट को जलाया, धीरे धीरे आप मेरे फेफड़े भी जलाओगे, थैंक यू इन एडवांस। और धीरे धीरे और भी धन राशि के ढेर जलेंगे, जब मेरी इस लाइफ स्टाइल मेरी कैसी लाइफ स्टाइल है, किंग साइज। इसके बाद हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल दिस वे, पहले तो लाइफ स्टाइल चल रही है लाइक अ किंग, और धीरे धीरे हम जब एडमिट होंगे, और हम साधारण नहीं है इसीलिए हम एडमिट तो 5-star हॉस्पिटल में होंगे, नॉट इन ऑर्डिनरी डिस्पेंसरी या गवर्नमेंट अस्पताल में तो हम एडमिट नहीं होने वाले हैं, हमारी स्टाइल कुछ भिन्न है, मरेंगे भी तो कैसे मरेंगे, स्टाइल से मरेंगे, स्टाइल स्टाइल स्टाइल। तो इस प्रकार की कोई मेहरबानी मेहरबानी नहीं है, कुर्बानी होगी, जीवन की कुर्बानी होगी उसमें। तो हुआ तो मित्र हो तो गोलोक चंद्र प्रभु जैसे मित्र फ्रेंड हो तो, जो हमें कृष्ण से, हमारा सुप्रीम फ्रेंड तो कृष्ण है, ऐसे कृष्ण से जुड़ा दे हमें, ऐसे कृष्ण का परिचय दे हमारा हमें, दैट फ्रेंड इज अ बेस्ट फ्रेंड, जो बेस्ट फ्रेंड के साथ हमारा संबंध स्थापित करे। और तो जो लोग है किसी का हित नहीं कर सकते, वैसे मित्रों का भी हित नहीं कर सकते, परिवार के सदस्यों का हित नहीं कर सकते, आप जानते ही नहीं है हित हित किन बातों में है, तो कैसे हित करोगे आप। पड़ोसी का हित नहीं कर सकते, लव thy नेबर लाइक as thyself, मित्रों पर पड़ोसी पर प्रेम करो, बाइबल में भी कहा है। लेकिन जो स्वयं ही क्या है, कामी कामी है, क्रोधी है, लोभी है, क्या मदी है, मद मद से पूर्ण है, और मोहित है, और मात्सर्य जिसमें है, छह शत्रु जिनका पीछा कर रहे हैं, या जो षड्रिपुओं के चंगुल में जो खुद ही फंसा हुआ है, ऐसा व्यक्ति औरों का हित नहीं कर सकता। ही डजंट नो, जानता ही नहीं है, स्वयं का ही हित नहीं जानता। नते स्वार्थ विदुम नते विदु स्वार्थ गतिम भी विष्णु, प्रहलाद महाराज ने कहा अपने मित्रों से, हे मित्रों, छोटा था प्रहलाद, 5 वर्ष का प्रहलाद अपने मित्रों को उपदेश कर रहा है, और प्रहलाद ने कहा नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, वे लोग नहीं जानते, क्या नहीं जानते, स्वार्थ, हमारा स्वार्थ है विष्णु कृष्ण प्राप्ति में ही, हमारा स्व अर्थ है, स्व का अर्थ, स्व मतलब है आत्मा, स्व मतलब आत्मा है, आत्मा का स्वार्थ तो परमात्मा या विष्णु कृष्ण प्राप्ति में स्वार्थ, नते विदु लोग नहीं जानते, तो वे नहीं जानते, हम नहीं जानते, तो वे लोग हम लोग एक दूसरों की मदद नहीं कर सकते, हम अच्छे घर की रखवाली भी नहीं कर सकते, हम समाज के सेवक नहीं बन सकते, राष्ट्र प्रेम तो भूल जाओ, आप जानते ही नहीं हो क्या राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र धर्म क्या होता है। और मानव धर्म या मानव प्रेम बस जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण कॉन्शियस है, वो खुद का कल्याण करेगा, अपने परिवार के सदस्यों का कल्याण करेगा, पड़ोसियों का, समाज के सभी सदस्यों का, राष्ट्र के सभी नागरिकों का, और सारे मानव जाति का कल्याण करने वाला तो कृष्ण भक्त ही है, कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वह स्वयं निष्काम है, शांत है, सर्वभूत हिते रतः, भगवान ने अपने अपने भक्त का महात्म्य यह समझाते हुए महात्म्य समझा, मेरा भक्त कैसा, सर्वभूत हिते रतः, सारे जीवों का हित में जो रत है, तल्लीन है, वह मेरा भक्त है। तो श्रील प्रभुपाद भी कहा करते थे कि कृष्ण भावना को अपनाना तो बिकम कृष्ण कॉन्शियस, और औरों को कृष्ण कॉन्शियस बनाने में योगदान देना This is the topmost welfare program. Topmost. इसे और कोई ऊंचा परोपकार का कृत्य हो ही नहीं सकता. भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होई लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार. चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, आप भारत में जन्मे हो और इस समय दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, अपने जन्म का इस मनुष्य जीवन का सार्थक चाहते हो तो क्या करो, करी कर परोपकार, परोपकार करो, परोपकार, परोपकार करो. इसके लिए समझना होगा परोपकार है क्या, क्या होता है परोपकार, किसको कहते हैं, कैसा मैं औरों का उपकार, औरों पर उपकार कर सकता हूँ, और उनके कल्याण का कौन सा कार्य मैं कर सकता हूँ. तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ऐसा कार्य करके गए, सिखाया उन्होंने. और केवल भारतवर्ष का ही कार्य नहीं या कल्याण नहीं, सारे विश्व का कल्याण. सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वाणि भद्राणि पश्यन्तु, न क्वचित् दुःख भाग् भवेत्. इस विचार वाले महात्मा होते हैं, परमात्मा भगवान की ओर से महात्मा. ऐसे विचार के साथ अपना आचार और सारा व्यवहार भी होता है. सर्वे सुखिना भवन्तु, उनके मन में अपना पराया ये भाव नहीं था, मेरे देश की, पराये देश की, मेरे धर्म के, ऐसा कुछ है ही नहीं. ये हम लोगों ने ये सब बनाया, अपना पराया ये भ्रम है, ये भालो ये मन, ये सब भ्रम, ये अच्छा ये बुरा है, ये अपना ये पराया, ये सारा भ्रम है. आध्यात्मिक स्तर पर, दिव्य स्तर पर हम वैसे एक है, कह सकते हम एक ही प्रभु के हैं, भगवान के हैं. तो भगवान के साथ पुनः जब हमको कोई जोड़ सकता है तो वह वैसा उस व्यक्ति जैसा और कोई दयालु दाता इस संसार में नहीं है. तो कृष्ण भावना बेलगांव में पहुंची है और राधानाथ महाराज आए यहाँ बहुत समय पहले, आज भी आया करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ रहते थे ना, आते रहते थे, लेकिन अब से पहले अधिक आया करते थे. समथिंग लाइक दैट. और फिर भक्ति रसामृत महाराज जी आए और फिर रह गए यहाँ. अब तो संन्यास लिया है तो सारे संसार के कल्याण के लिए उनको और कई दूर दूर जाना पड़ता है, लेकिन उनका बेस तो यही है और उनके पास काफ़ी बड़ी टीम है, और केवल मंदिर के भक्तों की टीम नहीं, और भी कांग्रेगेशन के हमारे काटवा जी जैसे कई सारे परिवार जुड़े हुए हैं इस आंदोलन के साथ, और कई सारे घर भी परिवार कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं. जे दिन गृहेते भजन देखी, गृहेते गोलो को भाए. जिस दिन घर में सत्संग होता है, भक्ति विनोद ठाकुर कहा करते थे, तो उनका अनुभव कि मेरा घर क्या हो गया, गोलोक हो गया, मेरा घर गोलोक हो गया, मेरा घर गोलोक हो गया, मैं गोलोक में हूँ. और जब मेरे घर में सत्संग कीर्तन और मृदंग बजता है तो मैं कहते हैं उस मृदंग की ध्वनि को जब मैं सुनता तो मेरा आनंदे हृदय नाचे, मेरा उस मृदंग की ध्वनि के कंपन से, ध्वनि के श्रवण से मेरा आनंद हृदय, आनंद से हृदय नाचता है. तो ऐसे कई सारे परिवार और फिर केवल फिर कृष्ण भावना बेलगांव से सीमित नहीं रही, आसपास के कई गांवों में नगरों में प्रचार प्रारंभ हुआ और रथ यात्रा में हजारों की संख्या में बाहर से भक्त आते हैं, यहाँ से तो लाखों की संख्या में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वैसे हर नागरिक का संपर्क हो जाता है रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ के साथ, देखते हैं सुनते हैं सूंघते हैं या कुछ गांव है, बड़ा गांव है बेलगांव, तो जगन्नाथ जगत के स्वामी जब गांव में प्रवेश करते हैं इज अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड ऑफ बेलगांव में, तो सभी प्रभावित हो जाते हैं। तो लेकिन कई सारे गांव भी प्रभावित, खानापुर और ये पुर और ये गांव, ये कई सारे नगरों में ग्रामों में प्रचार हो रहा है और इसी से तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं, उसी को बांटेंगे और उसी में कल्याण होगा संसार का, देश का, गो हत्या भी होगी और हम राष्ट्र धर्म का पालन भी करेंगे, ऐसा नहीं होगा, या शराब की नदी भी बहेगी और हम, और इसी के साथ हम धीरे धीरे महासत्ता बनेंगे, सुपर पावर बनेंगे या सुपर हंग्री पावर बनेंगे, कई सारे भूखे भी मर रहे हैं। तो कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या सुपर पावर बनेंगे, सुपर हंग्री पावर भी बनेंगे, भूखे भी लोग हैं हम लोग, अंधे हैं सारे तथा कथित हमारे नेतागण, हमारा हित नहीं जानते, आपका हित नहीं जानते, देशवासियों का हित नहीं जानते, आपका हित नहीं करेंगे वे। कुछ आशा की दुर्दशा होगी, डोंट इवन एक्सपेक्ट एनी बेनिफिट एनी, तो खैर वो जब भी परिवर्तन होगा, हम पॉलिटिकल चेंजेस जब भी होंगे हम तो ऑन इंडिविजुअल बेसिस हम लोग परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते, कोई रोक नहीं सकता। वर्षा ही वर्षा सर्वत्र है, तो वर्षा को रोकने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं उस वर्षा से बचने के लिए, कोई छाता लेके चल सकते हैं इतना तो हम कर सकते हैं, कोई रेनकोट पहन लिया हम आगे बढ़ सकते हैं। काटे ही काटे हैं सर्वत्र, थॉर्न्स एवरीवेयर, कितना साफ कर सकते हैं, व्हाट कुड वी डू, जूता बूट पहन के हम लोग मैदान में उतर सकते हैं, रक्षा होगी कांटों से। तो कलेर दोष निधे राजन, तो ऐसी स्थिति में बस उपाय है, वी आर नॉट लॉस्ट, भगवान के भक्त भ्रमित संभ्रमित नहीं है, अब क्या किया जाए, दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। और चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया और वो है मुख्य बात है द मेन थिंग, जो धर्म है, धर्म का सार है, हरेर नामैव केवलम नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी बड़ी बड़ी समस्या और इतना सरल सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, लोग समझते हैं बिग प्रॉब्लम्स एंड सच ए सिंपल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, दे थिंक सॉल्यूशन भी कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, नो इट डजंट हैव टू बी, वेरी सिंपल स्वीट सॉल्यूशन है और वो है हरि नाम, और परिवर्तन हो जाएंगे, अदरवाइज कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, संभव नहीं है। जब तक जीवों को भगवान के संपर्क में नहीं लाया जाता तो वे सद्गुणी नहीं बनेंगे, सर्व गुण संपन्न नहीं होंगे, उदार या औदार्य, कई सारे गुण उनमें नहीं आएंगे। तो धन्यवाद आप सब के पार्टिसिपेशन के लिए। और श्रील प्रभुपाद निवेदन किया करते थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझो इस हरे कृष्ण आंदोलन को, प्लीज अंडरस्टैंड दिस मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, समझो एंड ज्वाइन दिस, इसमें सम्मिलित हो जाओ। तो दिन ब दिन संख्या बढ़ ही रही है, इट्स अ गुड साइन, एनकरेजिंग। तो आगे बढ़ो और जगत के कल्याण के लिए कृष्ण भावना को अपनाओ और कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करो। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का भी वितरण करो, प्रसाद का वितरण, ऑर्गेनाइज बिग बिग फेस्टिवल्स, बड़े बड़े उत्सव, तो लोग संपर्क में आएंगे कृष्ण के और सुधरेंगे, कल्याण होगा उनका। हरे कृष्णा।